Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, तीन चीजें हैं जो कभी भी छुप नहीं सकती। पहला है सूरज, दूसरा है चंद्रमा और तीसरी बात है सत्य। सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होगा। वो भले उसकी कुछ परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो परीक्षाओं को पार करके फिर भी अगर सत्य की राह पर चलता रहेगा तो उसे अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब। ओम शांति। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जैसे हम देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर में कई लोगों को साइकोटिक डिसऑर्डर्स होने लगे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको ये डिसऑर्डर है। तो ऐसे में आप स्किज़ोफ्रेनिया की अगर हम बात करें, इसका एग्जैक्ट वे में अगर आप हमें अर्थ समझा सकें तो हमारे लिए बेहतर होगा।
सी बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब है डिसऑर्गेनाइज्ड
जी,
डिसोसिएटेड, जो हम मतलब समाज से जो हम हमारा जो अंदर थॉट प्रोसेस है, हमारा जो इमोशंस हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है, वो एक तरह से डिसऑर्गेनाइज जाती है।
ओके।
हम रियलिटी से कट जाते हैं
जी,
इनसाइट हमारे अंदर कम हो जाती है और हम एक अलग ही मेक बिलीव वर्ल्ड डिल्यूशंस होने लगते हैं ना, जो एक बिलीफ सिस्टम, जैसे कोई मुझे प्रेरित कर रहा है, कोई मुझे चला रहा है, को मुझे बाहर से कंट्रोल कर रहा है।
ओके।
हलुसिनेशंस क्या होते हैं, जिसमें मतलब कोई आवाज़ें आते हैं, आने लगती हैं, स्पेशली ऑडिटरी हलुसिनेशन ज़्यादा होते हैं।
ओके।
स्किज़ोफ्रेनिया में एक प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को अधिकतर क्या होता है कि ऐसे कोई थर्ड पर्सन, दो लोग बात कर रहे हैं, मेरे बारे बात कर रहे हैं।
ओके।
मतलब जो पेशेंट है वो समझता है कि मेरे बारे में दो लोग बातें हो रही हैं।
ओके।
वो मुझे कोई लोग इसके लिए एक्साइट कर रहे हैं, जैसे कि इसके लिए कुछ करने के लिए कर रहे हैं। कई बार पैरानॉइड आइडियाज़ आने लगते हैं, पैरानॉइड माना प्रोसिक्यूटरी आइडियाज़, ये व्यक्ति मेरे बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं।
अच्छा।
तो इस तरह से मतलब जो है ये इस तरह की फीलिंग्स आना है ना, या फिर जो है ग्रैंडियर के आइडियाज़, ग्रैंडियर माना एकदम से जैसे बहुत अपने आप को अलग ही समझने लगते हैं।
अच्छा।
कोई अलग मतलब जैसे हम कोई बहुत बड़े बन गए हैं।
अच्छा। ना
अपनी बहुत एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल जीना शुरू कर देते हैं, सारा पैसा खर्च कर देंगे थोड़े दिनों में, है ना।
Okay.
तो वो इस तरह का है, जैसे एक तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर इन द पास्ट।
ओके।
मतलब एकदम डिफरेंट बिहेवियर हो जाता है, एकदम आदमी को परिवार वाले समझ सकते हैं ये व्यक्ति का बिहेवियर अलग टाइप का हो गया है।
करेक्ट।
साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है ना। तो इस तरह की जैसे एक तरह का बिहेवियर जो कि अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है और जिसमें आदमी एकदम जैसे समाज में यूजलेस जैसा हो जाता है।
ओके।
अपने लिए तो होता है, समाज के लिए भी यूजलेस ऐसा हो जाता है।
ओके।
क्योंकि व्यक्ति को पूछो तो उसे नहीं पता होता कि मेरे
क्या हुआ, मेरे अंदर कोई तकलीफ है,
उसको कोई तकलीफ फील नहीं होती। उससे पूछेंगे आपको क्या हुआ तो ही और शी विल से कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ।
करेक्ट।
और लगभग इसकी जो प्रिवेलेंस है, इंसिडेंस है, वो 0.5 to 1% कह सकते हैं, 100 में से 1 आदमी को या 200 में से 1 आदमी को होता है।
अच्छा।
और जैसे पेरेंट्स जो हैं, जहाँ पर इसमें पेरेंट्स अगर सिंगल पेरेंट को बीमारी है तो 15% के लगभग लोगों को चांस है होने का, बच्चों को होने का, और दोनों पेरेंट को है तो लगभग 65% चांस हो जाते हैं बीमारी का।
अच्छा।
तो जीन्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और
okay.
आज जो है ये संख्या बढ़ती जा रही है।
हाँ जी।
यंग स्पेशली यंग वंस में
जी, बिल्कुल।
इसका नॉर्मली भी तो अर्ली ऑनसेट होता है, अर्ली ऑनसेट मतलब यूजली 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, अधिकतर 25 साल की उम्र से पहले हो जाता है।
ओके।
बाद में भी होता है, कई बार मिडिल एज में भी ऑनसेट होता है, 30 में 35 में 40 में भी होता है, पर अर्ली ऑनसेट ज़्यादा केसेस में होता है।
ओके। डॉक्टर साहब, किन लोगों को ये बीमारी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर हमें पता हो तो वो व्यक्ति सारे सजग रहेंगे।
जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, अगर पेरेंट्स में किसी को है
जी,
पेरेंट्स में अगर एक पेरेंट को है तो चांसेस कितने हैं,
15%
के आसपास, 12 से 15%, और दोनों पेरेंट्स को है तो लगभग 65% 66% चांसेस हो जाते हैं।
Correct.
तो ऐसे पेरेंट्स जहाँ पेरेंट्स में है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं,
ओके,
मतलब कहीं भी, जैसे मैंने बताया आपके, जैसे पेरेंट्स तो माता पिता हो गए, फिर मामा और मौसी,
मौसी
और चाचा बुआ, दादा दादी,
दादा दादी,
तो ये जो आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स आते हैं
जी,
इनके अंदर किसी को भी है तो देन यू आर मच मोर प्रोन टू डेवलप, इवन नाना नानी जो आपके जो मदर की तरफ के हो गए ना, मदर की तरफ पेरेंट्स की तरफ के जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनमें से किसी को भी है तो फिर आपको होने के चांस बहुत जाते हैं। तो ये आप एक्स्ट्रा अवेयर कि मुझे है, और उसके लिए फिर जैसे एक दो बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जीन्स हैं, वो जीन्स मैनिफेस्ट कब होते हैं,
जब
उनको जीन्स बीज की तरह से होते हैं, जब उनको धरती मिले, सीड मिले, वो धरती मिले, धरती कौन सी मिलेगी, नेगेटिव टीम की, नेगेटिव मन की धरती मिलेगी, नेगेटिव मन माना हमारे विचार नेगेटिव, भावनाएं नेगेटिव, एटीट्यूड नेगेटिव, और हमारी स्मृतियाँ यादें, हमारे इंप्रेशंस नेगेटिव, हमारे बिलीफ सिस्टम नेगेटिव, और हमारे जो संस्कार नेगेटिव, हैबिट्स नेगेटिव पड़ जाती हैं, लेट सोना, लेट उठना, एडिक्शंस में चले जाते हैं, या फिर हम गुस्सा ज़्यादा करते हैं स्पेशली, या मैं कहना चाहूँगा या आपको इस बात को, ये बात बहुत समझ सकते हैं, समाज को भी मैसेज, मैं अपने जो व्यूअर्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, जो स्किजॉइड पर्सनैलिटी हो जाते हैं,
अच्छा,
सस्पिशियस नेचर, एज्यूमिंग नेचर, शक और अनुमान के नेचर के जो लोग होते
हैं, अच्छा,
उनको भविष्य में जाके ये बीमारी होने के बहुत चांस होते हैं
जी।
स्ट्रेस जो है एक ऐसा एक ट्रिगर है, स्ट्रेस वो धरती है जिसके अंदर ये बीमारी के जीन्स पनपते हैं, और ऊपर से गलत खान पान, तामसिक तरह का भोजन खाना, नॉन वेज खाना, या आप जैसे बहुत चाय कॉफ़ी, बहुत सॉफ्ट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स पीना, एडिक्शंस में चले जाना, ड्रग एडिक्शंस में चले जाना, ये जो चीज़ें उस चीज़ को प्रेसिपिटेट कर देंगी, राइट, मटेरियल के पीछे बहुत घूमना, मनी के पीछे बहुत जाना, नेम फेम के पीछे बहुत जाना, तो उससे आपकी नेचर ऑटोमेटिक सस्पिशियस और अज्यूमिंग नेचर बन जाएगी, शक अनुमान वाली नेचर बन जाएगी, तो उसके कारण फिर भी ये प्रॉब्लम होगी। ये सब बातें जैसे इसको हम अगर हम शुरू से ध्यान रखें, मन को पॉजिटिव बना के रखें, अपनी टीम को पॉजिटिव बना के रखें, और खान पान हमारा शुद्ध हो, शुद्ध और सात्विक हो, और हमारा व्यवहार ठीक हो, हम रियलिटी कॉन्शियस बने, तो हम इससे मतलब बच सकते हैं।
डॉक्टर साहब, स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हैं हम, इसमें कितने प्रकार की स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं वो अगर आप हमें बता सके तो हम फिर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये कौन से प्रकार का स्किज़ोफ्रेनिया है।
स्किज़ोफ्रेनिया वैसे 8-9 प्रकार का होता है,
हाँ जी,
किंतु उसमें से मुख्य जो हमें समझने की बात है, कुछ हम अगर प्रोग्नोसिस के हिसाब से ले लें, प्रोग्नोसिस माना जिसमें फ़ायदा है ज़्यादा, जिसमें जल्दी ठीक हो सकते हैं, कुछ में कम चांसेस होते हैं ठीक होने के,
जी,
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे कुछ हमारा एक तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, जो कि हमें इसमें पर्सिक्यूटरी आइडियाज़ होते हैं, ग्रैंडियर के आइडियाज़ होते हैं, ग्रैंडियर माना हम बहुत अमीर हैं, बहुत हम जैसे राजा की तरह बिहेव करेंगे,
अच्छा,
बहुत एक्सपेंसिव हमारा लाइफस्टाइल दिखाई देगा, और वो एक अच्छा है, मतलब उसमें हम जल्दी ठीक हो सकते हैं, राइट, और ऐसे ही पैरानॉइड भी जल्दी ठीक हो सकते हैं, तो ये अच्छा एक बेटर प्रोग्नोसिस वाला स्किज़ोफ्रेनिया। दूसरा फिर जो है कैटाटोनिक होता है, उसमें हमारी जो मसल्स, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो उसकी रिस्पॉन्स अलग तरह से हो जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, एबनॉर्मल जैसे लगती हैं मूवमेंट्स, और वो जो है स्किज़ोफ्रेनिया हमारा, उसमें भी अच्छे चांस होते हैं। सबसे ख़तरनाक जो स्किज़ोफ्रेनिया हिबोफ्रेनिक होता है, हिबोफ्रेनिक उसमें क्या होता है, हमारी एकदम टोटली जैसे हम टोटली कट जाते हैं सोसाइटी से,
अच्छा,
और उसमें हमारी इनसाइट एकदम ख़त्म हो जाती है, और उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं रिकवरी के। तो इस तरह से मतलब स्किज़ोफ्रेनिया काफ़ी प्रकार के हैं, तो उसको हम उनके प्रकार में ना जा करके, मैं समझता हूँ इसका जब भी हमें ऐसा कभी हो, कभी हमें ऐसा लगे कि इसका बिहेवियर कुछ, और स्पेशली इसके जो सिम्टम्स हैं वो जो है हमें बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि डेल्यूशन, जो मैंने बताया शुरू में बताया, डेल्यूशंस और हालोसिनेशंस,
करेक्ट,
ऐसा कुछ हमारे अंदर, ऐसे हमें एक तरह के हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, जैसे कि हमें लग रहा है कोई तीसरा आदमी, कोई बाहर वाली एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल कोई चीज़ है जो मुझे कंट्रोल कर रही है, राइट, ऐसी फीलिंग रहना, ये डिल्यूशन होने लगते हैं कि मुझे कोई कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ प्रेरित कर रहा है कोई, तो इस तरह के फीलिंग्स आना, हालूसिनेशंस, आवाज़ें आने लगती हैं, कोई मुझसे बात करता है, दूसरों को सुनाई नहीं देती है, मुझे सुनाई देती है, राइट, फिर दूसरी से फिर दूसरा कोई मेरे बारे में प्लानिंग कर रहा है, दो व्यक्ति मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसको पेशेंट को ऐसा फील होता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं।
करेक्ट।
तो ये जो है एक तरह से इसे कहते हैं थर्ड पर्सन हॉलुसिनेशंस। थर्ड पर्सन हॉलुसिनेशंस आर वेरी टिपिकल ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया।
ओके।
राइट। तो ये जो है इनका डायग्नोस करने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो ये हमें इस तरह का मतलब हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी साइकोमोटर रिटार्डेशन तो होती है, मतलब हम लोग जो हमारी एबिलिटी टू डू वर्क है वो खत्म हो जाती है।
अच्छा।
हम काम नहीं कर पाते हैं, हम जैसे अपने आप से जैसे मैं बाद में रिपीट नहीं करना चाहूँगा किस तरह से हम लोग लॉस ऑफ इनसाइट हो जाती है
ना।
तो वो इस सब बातें इसको हमें सही ढंग से समझ करके हमें तुरंत एक साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए।
ओके।
क्योंकि साइकेट्रिस्ट कुछ आजकल, पहले तो शुरू में मेडिसिन बहुत कम थी, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन पर आ गई हैं, नई मेडिसिन आई हैं, वो मेडिसिन की मदद लेनी चाहिए।
जी।
तो उन मेडिसिन के साथ साथ हमें घर में हमारा घर का वातावरण हमें जो है इसे कहते हैं एक बिहेवियरल थेरेपी भी कहते हैं और होम थेरेपी भी, फैमिली थेरेपी भी कहते हैं।
ओके।
कि हमारे घर का वातावरण पॉजिटिव हो, डिमांडिंग ना हो बच्चे के साथ, या जो बच्चा है बड़ा जो भी उसमें सफ़र कर रहा है तो उसमें डिमांड ना हो, उसको एक्सेप्ट करें हम, और हमारा लवफुल बिहेवियर उसके प्रति।
अच्छा।
वो बहुत मदद करता है, इट गोज़ ए लॉन्ग वे।
जी।
उनके खाने पीने का ध्यान रखें कई बार, क्योंकि खाना भी निगलेक्ट हो जाता है।
अच्छा।
जो ऐसे पेशेंट्स बन जाते हैं उनको खाने पीने का इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उनको खाना पीने का भी उनको पता नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं रहती है। तो टाइम पर उनको खाना, सैर करना, और हो सके तो समय पर उनको नींद करने का प्रॉपर वातावरण हो, घर में लाइट का प्रॉपर ऐसा हो उनके हिसाब से लाइट को सेट करें, है ना, वातावरण को उस ढंग से बनाएं, तो उससे जो है वो जल्दी ही रिकवर हो सकते हैं।
Okay.
और टाइम टाइम मेडिकल केयर, खाली एक बार नहीं, एक बार दिखा देने की बात नहीं कि बार बार फिर मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है।
ओके।
क्योंकि कई बार पेशेंट रेजिस्ट करता है।
अच्छा।
इलाज के लिए, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि वो ही सही है और शी सफरिंग, तो वो दवाई लेने में भी दवाई भी देनी पड़ती है। तो टाइम पे दवाई देना बहुत आवश्यक है
जी,
क्योंकि पेशेंट दवाई नहीं देगा, दवाई फेंक भी देगा। तो किसी को, किसी व्यक्ति घर के ही, किसी परिवार के व्यक्ति, कैसे भी करके उसको मेडिसिन टाइम पर देनी है
जी।
और कभी मेडिसिन के रूप में ना दें तो उसे दूध में डाल के दें, चाय में डाल के दें, किसी रूप में उसको खाने में दें, ताकि उस बच्चे उसके अंदर वो मेडिसिन जाए।
ओके।
जिससे वो रिकवर हो सके
जी।
इस तरह से हमें करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, ये तो हम समझ गए कि कुछ तरीके हैं जिनसे आप इसे रिकवर कर सकते हैं। अब सिम्टम्स के बारे में भी हमने बात कर ली, लेकिन सबसे मेन जो रूट कॉज होता है कि वो होता क्यों है स्किज़ोफ्रेनिया, उस होने का कुछ कारण होता है या वो हेरिडिटरी ही सिर्फ होता है?
जैसे मैंने बताया कि आज तक सही कारण तो पता नहीं है।
अच्छा।
डिप्रेशन का भी सही कारण तो पता नहीं है। बाकी बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके बारे में ना।
ओके।
ऐसे थ्योरीज कही जाती हैं, तो जीन्स की मैंने बताया, जेनेटिक हेरिडिटरी जीन्स ये देखने में आया कि जिनके पेरेंट्स को होता है स्किज़ोफ्रेनिया उनको, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को होता है उनमें ज़्यादा चांस होते हैं। किंतु इसके बारे में दैट इज ऑल्सो नॉट द कॉज। सारे स्किज़ोफ्रेनिया केसेस ऐसे नहीं होते जिनके पेरेंट्स को है।
Okay.
ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया इनकी फैमिली में कहीं भी नहीं, फिर भी इनको स्किज़ोफ्रेनिया। तो उनकी अलग अलग थ्योरीज हैं फिर ना। जैसे एक तो हमारी जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उसके अनुसार, जैसे एक तो स्ट्रेस थ्योरी है
जी।
कि स्ट्रेस जो है, जो आज स्ट्रेस जो है, मतलब एक समाज में स्ट्रेस बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही हैं, एग्रेसिवनेस बढ़ रही है, तो उस विशेष साइकिल में आदमी फंस जाता है, और उसके कारण ऐसे थॉट प्रोसेस शुरू होते हैं। उसके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो एक न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी भी है, कैसे हार्मोन्स हमारे, कैसे जो हमारी न्यूरल फाइनली फायरिंग होती रहती है लगातार, और कैसे वो फिर हमारे इवन जीन्स भी बन जाते हैं। अगर आपके अंदर बीमारी का जीन नहीं है स्किज़ोफ्रेनिया का, तो जीन पैदा हो सकता है।
ओके।
पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है एक्सेसिव स्ट्रेस के अंदर, तो वो जीन म्यूटेशन होकर के जीन बन जाता है और फिर बीमारी शुरू हो जाती है।
ओके।
आई थिंक इसमें आज के समाज में, क्योंकि पहले नहीं था स्किज़ोफ्रेनिया की प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, जीन तो होते होंगे पहले भी
जी।
तो सारा तो होता था, किंतु ये जीन में म्यूटेशन जो समाज के समय के अनुसार आ रही है
जी।
और एक ये भी पॉसिबल है, इसके बारे में हम आज तक साइंस क्लियर नहीं है, कि इवन एनवायरमेंटल पोल्यूशन में भी रिस्पॉन्सिबल।
अच्छा।
सिटीज़ में, शहरों में, गाँव में, फिर भी रूरल एरिया में कम देखने में आता है, शहरों में जहाँ प्रेशर्स ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा देखने में आता है, जहाँ बच्चों को ज़्यादा प्रेशर्स है, यंग वंस को ज़्यादा प्रेशर्स है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फास्ट पेस्ड लाइफ है
जी।
तो वहाँ, और प्लस फूड ऑल्सो हैज़ ए पार्ट टू प्ले। आज इसका फूड है, मतलब ओवरऑल लाइफ स्टाइल कैसा हो गया।
ओके।
तो दिस में भी रिस्पॉन्सिबल।
ओके।
तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मेडिसिन में कुछ चेंजेस आए हैं
जी।
जो पहले सिर्फ एक या दो मेडिसिन थे, नाउ वी हैव लिस्ट ऑफ अबाउट 20 मेडिसिन विच कैन बी यूज्ड। तो इस तरह से अगर सही ढंग से मेडिसिन को टाइम पर यूज़ करें, साथ में समय पर साइकोथेरेपी दें। एक मैं बात यहाँ क्लियर कर देना चाहूँगा कि जैसे हम हर बार मेडिटेशन की बात करते आए हैं, तो मेडिटेशन इज नॉट द राइट थिंग टू बी डन गिवन दिस पीपल। तो मेडिटेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है
जी।
क्यों? मेडिटेशन के लिए काउंटर प्रोडक्टिव
जी,
क्योंकि सीवियर डिप्रेशन और स्किजोफ्रेनिया दोनों में, डिप्रेशन में दोनों में ही हमें मेडिटेशन से नहीं देना चाहिए।
अच्छा?
नहीं सिखाना चाहिए।
अच्छा,
दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं।
ओके।
क्योंकि दोनों में रिलेटिवली लॉस ऑफ इंसाइट होती है
जी,
थॉट डिसऑर्डर होता है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है, तो वो वहाँ मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं ना, तो वो उसमें नहीं देना चाहिए।
अच्छा।
उस समय क्या कि अंदर टोटल केओस है, पेशेंट में अंदर होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, इतनी साइकोमोटर रिटार्डेशन है, कुछ नहीं कर सकता है। आप उसको थॉट्स दे रहे हैं, आप ये हो आप ये हो, तो वो और कन्फ्यूज हो जाएगा।
ओह।
और उसको जो डेल्यूशंस हो रहे हैं, उससे के डेल्यूशंस होने शुरू हो जाएंगे।
ओके।
अगर आप सूक्ष्म वेतन की बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं, तो डेल्यूशन हो जाएगा उसको।
ओके।
हलुसिनेशन होने लगेंगे, वो कहेगा फिर कोई मेरे को ऐसी बातें आ रही हैं, वहाँ से ये बात आ रही है, वहाँ से मुझे वो ऐसी बातें आ रही हैं।
अच्छा, तो उसमें भी वो साइकिल में चले जाते हैं,
गलत साइकिल में चले जाते हैं। इसलिए उनको मेडिटेशन का जो रोल है, पहले दवाइयाँ, फिर मेडिटेशन फेजेस, और उसमें सबसे ज़्यादा बड़े प्रकाश हम कहते हैं सकाश देने की आवश्यकता है।
अच्छा।
पेरेंट्स का बहुत हेल्पफुल एटीट्यूड, फैमिली मेम्बर्स का बहुत हेल्पफुल एटीट्यूड, उनको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो उस बात को सहन कर सकें, समा सकें और परख सकें
जी,
सही समय पर निर्णय कर सकें, उसकी पेशेंट की बड़ी से बड़ी बात को भी छोटा बना सकें,
करेक्ट,
समेट सकें
जी,
और उसे कोऑपरेट कर सकें, ना कि उससे एक्सपेक्ट करें, राइट। जैसे जैसे फिर ऐसी हेल्प जब बच्चे को मिलती है, वही मैं आपको फिर कहूँगा कि अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल केयर मिलती है,
करेक्ट,
सेल्फलेस केयर मिलती है, जिसे हम सेल्फलेस लव कहते हैं, निस्वार्थ प्यार मिलता है, नैसर्गिक प्यार मिलता है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, तो वो प्यार, वो फीलिंग हील करती है।
ओके।
और जो उससे जो उसको अंदर से जो फीलिंग, जो उसका न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो टोटल हेवायर चले गए, वो वापस ठीक होने लगते हैं, हार्मोनल सिस्टम वापस से सेट होने लगता है, उससे उसका सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम का बैलेंस होने लगता है। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस।
अच्छा।
इट मे नॉट हैपन इन डेज, इन फ्यू डेज, इट मे टेक वीक्स एंड मंथ्स।
ओके।
पेशेंस की बहुत आवश्यकता है।
करेक्ट।
और फिर जैसे जैसे पेशेंट को ये सब होने लगे, फिर उनको सीरियल वाइज थॉट्स, सिंगल थॉट मेडिटेशन, सिंगल लाइन्स में मेडिटेशन, टू मच नहीं समझा करके, सिंगल लाइन, और उसमें उस पेशेंट की फिर मदद की जाए
जी,
उस थॉट के साथ जो उसको सिखाने वाले हैं या साथी हैं या घर वाले हैं, तो उसको मदद करें,
ठीक है,
तब जा करके वो धीरे 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 एक तरह गहरी गुफा है या गहरा गड्ढा है, उसमें से बाहर निकल सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति को अगर ये प्रॉब्लम हो जाए, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उनके लिए?
सबसे पहले स्टेप तो इस बात को उनके सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस बच्चे का या इस बड़े का जो भी है, उसका स्वभाव क्या, में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर डेल्यूशन हालूसिनेशन हो रहे हैं और कुछ डिफरेंट लग रहा है बच्चा पहले से, तो इमीडिएटली वी शुड कंसल्ट ए साइकेट्रिस्ट विदाउट एनी डिले। भले बच्चा कहे वो या व्यक्ति कहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि उसे नहीं पता लगता है, इनसाइट नहीं है, तो फिर भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए,
ठीक है,
किसी ना किसी बहाने से लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाएँ, और जो भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वो देते हैं, राय देते हैं, साइकोथेरेपी कुछ मेजर्स बताते हैं, टाइम टू टाइम के पास जाते रहना चाहिए, और दवाइयाँ की जिम्मेवारी अपने हाथ में लेनी चाहिए।
okay.
कभी पेशेंट को नहीं बोल देना चाहिए कि आप मेडिसिन ऐसे से करके खा लो, कीप द मेडिसिन विद यू, टाइम पर मेडिसिन कैसे भी करके बच्चे को खिलाना चाहिए, बच्चा या बड़ा जो भी है,
जो भी है,
वो देना चाहिए। फिर परिवार को एक पॉजिटिव वातावरण घर में देना चाहिए, जिसमें उसकी सपोर्ट उसको दें, समझना चाहिए कि इसके बस में नहीं है, इसकी हमें मदद करनी है, कैसे भी करके इसको ठीक करना है, तो प्यार का अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर, रेस्पेक्टफुल केयर उसको मिलनी चाहिए, जिसे निस्वार्थ प्यार कहते हैं वो मिले, और खान पान शुद्ध सात्विक भोजन से मिले, और उसको इनक्रेज करें, साथ में जाएं, अकेले ना छोड़ें, साथ में सैर पर लेकर जाएं, खुले वातावरण में बिठाएं और इस तरह का वातावरण हो। टेलीविजन से बचें,
ओके,
टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, इन चीज़ों से बचें, क्योंकि इसमें वो कन्फ्यूशंस, कई तरह के कन्फ्यूशंस हो सकते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनसे बचें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बचें
जी।
और फिर धीरे धीरे उनको, जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन का सकाश रूप में मेडिटेशन को हेल्प करें, अपने प्रैक्टिकल मेडिटेशन के द्वारा
जी,
अपने प्रैक्टिकल स्वरूप के द्वारा उसकी हेल्प करें, और फिर धीरे धीरे जैसे थोड़ा सा इंसाइट आने लगे, फिर उनको सिंगल लाइन मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराएं कुछ कुछ हफ्तों तक, फिर चेंज करें, फिर चेंज करें, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो रिकवर हो जाए
जी। डॉक्टर साहब, आज हमने एक बीमारी के साथ डील किया जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। इसके बारे में हमने कई सारी बातें जानी कि कैसे होता है, और साथ ही साथ कैसे उससे लड़ें और किस तरह से उसे रिकवर भी करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, स्किज़ोफ्रेनिया जिसके जो आज सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में दिखाई देने लगा है, उसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं जो आज हमने जाने, जिसमें सबसे पहला कि उस सिम्टम्स को हमको जानने की ज़रूरत है कि क्या सच में हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को ये है। अगर वो सिम्टम्स आपको नज़र आए तो सबसे पहले तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास, वहाँ से मेडिसिंस लेकर उन्हें रेगुलरली मेडिसिंस दें। साथ ही साथ घर का माहौल इतना पॉजिटिव बना दीजिए जिससे उन्हें हील होने में और ज़्यादा आसानी होगी, और उन्हें अनकंडीशनल लव दीजिए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।